एक अनजान शख्स द्वारा भेजी कुछ तस्वीरों को देखने के बाद वेद ने अंदाज़ा लगाया था कि सालों से वो जिस इंसान को ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं शिवांशा ही थी। उसी ने भरत और शोभा के बारे में पूरी जानकारी देवराज को दी थी, जिसकी वजह से वो उन दोनों को साथ अकेले देखकर मार पाया था। इतना सब कुछ देखने के बाद वेद के इमोशंस शिवांशा के लिए पूरी तरह खत्म हो चुके थे। उसने गुस्से में शिवांशा को बहुत कुछ कहा था। उसने यही कहा कि राजावत फैमिली और अंकुश ने शिवांशा के साथ जो भी किया वो वही सब डिजर्व करती थी। वेद को देर रात तक नींद नहीं आई थी, तो वही शिवांशा नींद में फिर से अपनी कड़वी यादों में जा चुकी थी। उसे पता नहीं था कि बचपन में वेद ने उसके साथ रेप किया था। सपने में शिवांशा उन्हीं लम्हों को जी रही थी जब अंकुश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब शिवांशा जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गई थी, तो कुछ ऐसा ही हाल शिवांशा का असलियत में था। वो जोर से चिल्लाकर नींद से उठ गई थी। वहीं वेद भी शिवांशा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बिस्तर से खड़ा हो गया था। वो चिल्लाई क्यों होगी? क्या उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा? वेद ने घबरा कर कहा। वो जल्दी से उठकर बाहर जाने को हुआ, तभी दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए थे। उसका ये रोज का है, यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस लड़की के जाल में फंस भी कैसे गया। वो ये प्यार और इज्जत डिजर्व नहीं करती है, वेद ने अपनी मुट्ठियां भींच के हुए कहा। वो वापस बेड पर आ गया था। वेद ने खुद को शिवांशा के पास जाने से रोक लिया था, तो वहीं अपने कमरे के अंदर शिवांशा डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था।
लगभग 9 बजे के करीब उन सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, और इसी वक्त पर रानी ऊपर शिवांशा के लिए नाश्ता लेकर जाती थी। आराध्या ने रानी को इस काम के लिए बुलाया। रानी एक प्लेट में उसके लिए खाना लेकर ऊपर जा रही थी, तभी वेद ने उसे रोकते हुए कहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सो रही है, जब जरूरत महसूस होगी खाने का बोल देगी। वो अब इस घर में कोई गेस्ट नहीं है जो उसे किसी भी चीज़ के लिए बोलने में शर्म महसूस हो। ठीक है भैया, रानी बोली। उसे सब समझाने के बाद वेद वंश के साथ वहां से निकल गया था। वहीं आराध्या, नव्यांशी और अक्षत अभी भी वहीं पर थे। हालांकि अक्षत को भी ऑफिस जाना था, लेकिन वो उनसे अलग गाड़ी में जाता था, इस वजह से उसे वहां रुकने का मौका मिल गया। वेद के वहां से जाते ही अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, पक्का कोई बड़ी गड़बड़ है, भाभी कमरे के अंदर है और भाई हम सबको डांट रहे हैं। सोचो, हम पर इतना गुस्सा कर रहे हैं तो भाभी को कितना सुनाया होगा। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, आराध्या ने अफसोस भरे स्वर में कहा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, और सच में मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं वो मेरी वजह से तो हम सबसे इतना कटकर नहीं रहती हैं। नव्यांशी ने भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। नव्यांशी पहली बार वेद के अलावा किसी और के लिए एफर्ट डालने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर आराध्या और अक्षत उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे थे। उनकी नज़रों को समझते हुए नव्यांशी ने सख्त आवाज़ में कहा, मुझे इस तरह घूर कर मत देखो, वरना सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने सुना है संडे को यहाँ कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आ रहा है जो सिंगर भी है, क्यों ना हम उसका कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जाएं? अच्छा मजाक है, जैसे वेद भैया जाने ही देंगे, आराध्या ने सिर हिलाकर कहा। बिल्कुल, पता नहीं क्यों भाई को ये सब लोग आवारा लगते हैं। उनको यही कहेंगे कि अगर सच में म्यूजिक सुनना ही है तो किसी अच्छे और बड़े सिंगर के कॉन्सर्ट को अटेंड करो, ताकि कुछ अच्छा सुनने को मिले। उन्हें पॉप म्यूजिक भी नहीं पसंद है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वाइफ और बहनें ऐसी किसी जगह पर जाएं। और सच कहूँ तो मैं भी इस बात के फेवर में नहीं हूँ। तुम लोगों को कहीं और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए जो ऐसे नाइट आउट करने का सोचा? अक्षत ने आराध्या की बात पर सहमति जताते हुए कहा। छोटे हो, छोटे बनकर रहो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वेद भैया को बताएगा कौन? जब पता चलेगा तभी तो वो डांटेंगे ना। अब तो मैंने सोच लिया है कि हम इस कॉन्सर्ट को जरूर अटेंड करेंगे। मैं 3 टिकट बुक करवा लेती हूँ, नव्यांशी ने सख्ती से जवाब दिया। उसने पूरा मन बना लिया था कि वो शिवांशा को घुमाने के लिए लेकर जाएगी। आखिर उसे अरमान को ये जो प्रूफ करना था कि उसने शिवांशा को अपनी भाभी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन 3 टिकट क्यों? मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, अक्षत जल्दी से बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हें भी ये सब पसंद नहीं है, तो घर पर ही रहो। बस इतना कर देना कि हमें पिक और रिसीव करने आ जाना, और भैया से इस बात को छुपा कर रखना। शिवांशा भाभी को कैसे कन्वेंस करना है ये तो मुझ पर छोड़ दो, नव्यांशी बोली। बाकी लोगों की तरह वो भी वहां से अपने काम को जाने लगी थी। आराध्या और अक्षत भी अब निकल गए थे। दोपहर के लगभग 2 बज रहे होंगे। उस वक्त वेद किसी काम के चलते घर आया था। वेद ने रानी को मना किया था कि वो शिवांशा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर ना जाए, इसलिए वो ऊपर नहीं गई थी। पर उसे भी शिवांशा की फिक्र सता रही थी। 2 बजने को आए थे लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं आई थी, और ना ही उसने खाने के लिए इंटरकॉम पर कॉल किया था। वेद जब घर पर पहुंचा तब रानी जल्दी से उसके पास दौड़कर आई और बोली, अच्छा हुआ वेद भैया आप घर पर आ गए, वरना मुझे आपको फोन करने में थोड़ी झिझक हो रही थी। क्या हुआ रानी, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना?
वेद ने तुरंत पूछा, हाँ सब ठीक है, लेकिन अब तक भाभी नीचे नहीं आई है और ना ही उन्होंने खाना मंगवाया है। मैं उन्हें उठाने के लिए आपके कमरे में भी गई थी, लेकिन उन्होंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। रानी ने वेद को सब कुछ बता दिया था। ठीक है, मैं देखता हूँ, वेद बोला और फिर ऊपर जाने लगा। उसे शिवांशा की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे इस वक्त यही लग रहा था कि रानी ने शिवांशा के बजाय उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया था। तभी शिवांशा ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया होगा। वेद अपने फ्लोर पर गया और उसने शिवांशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आने पर वेद बाहर से सबसे तेज आवाज में बोला, देखो ये मासूम बनने का दिखावा किसी और के सामने करना, मुझे इससे सख्त चिढ़ है। चुपचाप दरवाजा खोलो, ये क्या लगा रखा है तुमने? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें यहाँ प्रिंसेस बनाकर रखने का, मेरी मजबूरी है। अंदर से शिवांशा का कोई जवाब नहीं आया। वेद को अब सच में उस पर और गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए बोला, ठीक है फिर यहीं अंदर मरती रहो, अच्छा है ना, मेरा काम आसान हो जाएगा। अंदर शिवांशा के कानों में वेद की धीमी आवाज आ रही थी। वो तेज बुखार से तप रही थी, उसे पूरी तरह होश तक नहीं था। इतना जरूर जानती थी कि वेद उसके दरवाजे के बाहर खड़ा अभी भी उसे भला बुरा कह रहा था। शिवांशा के कोई जवाब ना देने पर वेद गुस्से में वहां से जाने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शिवांशा ने जवाब क्यों नहीं दिया, या फिर आज उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खा रहा था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि शिवांशा ऐसी हरकतें करके फिर से उसकी नजरों में बेचारी बनने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसकी केयर करे।